दरवाजे की कुंडी हिली, हल्की सी चरमराहट के साथ दरवाजा खुला और रम्या भीतर आई। उसके कदम थके हुए थे, आंखें जमीन पर झुकी हुईं, सांसें थोड़ी तेज। और सबसे ज्यादा जो चुभ रहा था वो ये कि उसने स्कूल यूनिफॉर्म नहीं पहन रखी थी। उसके बदन पर हल्के रंग की सलवार कमीज थी, दुपट्टा ठीक से कंधे पर रखा हुआ, लेकिन हाथों की उंगलियां उसे बार बार मसल रही थीं, जैसे घबराहट वहीं से मिटाई हो। रत्ना देवी सबसे पहले उठी। आ गई। उनकी आवाज में राहत भी थी और डर का आखिरी कंपकपाता सिरा भी। श्यामली ने एक कदम आगे बढ़ना चाहा, लेकिन उससे पहले ही शकुंतला खड़ी हो चुकी थी। उसका चेहरा सख्त था, आंखों में सवालों की कतार और होठों पर वो चुप्पी जो अक्सर तूफान से पहले आती है। कहाँ थी? सवाल छोटा था, लेकिन उसकी गूंज पूरे हॉल में फैल गई। रम्या ने सिर और झुका लिया। मैं, आवाज गले में अटक गई। 2 बजे स्कूल की छुट्टी होती है, शकुंतला बोली, और अब 5:30 बज रहे हैं। उसने एक पल रम्या के कपड़ों की तरफ देखा, फिर उसकी आंखें तेज हो गईं। और ये कपड़े? रम्या ने होंठ भींच लिए, आंखें भर आईं। श्यामली ने बीच में बोलने की कोशिश की, दीदी? नहीं श्यामली, शकुंतला ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया, आज नहीं। वो रम्या के सामने आकर खड़ी हो गई। आवाज अब ऊंची नहीं थी, लेकिन और भी डरावनी थी। तो किसी लड़के के साथ थी? हॉल में जैसे सांस रुक गई। रत्ना देवी ने चौंककर शकुंतला की तरफ देखा, शकु? लेकिन शकुंतला की आंखें रम्या पर टिकी थीं। नाम क्या है? रम्या की आंखों से आंसू छलक पड़े। वो अचानक जोर जोर से सिर हिलाने लगी। नहीं, उसकी आवाज टूट रही थी, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर क्या है? शकुंतला ने एक कदम और आगे बढ़कर पूछा। रम्या अब रो रही थी, खुलकर, बिना आवाज रोकने की कोशिश किए। मैं सिर्फ सहेली के घर गई थी, वो सिसकियों के बीच बोली। माँ, कोई लड़का नहीं था, कुछ भी नहीं। शकुंतला के चेहरे पर अविश्वास साफ था। तो देर क्यों? रम्या ने दुपट्टे से आंखें पोंछी। वहां उसकी मम्मी नहीं थी, और फिर यूनिफॉर्म गंदी हो गई थी। गंदी कैसे? सवाल तुरंत आया। रम्या ने एक पल झिझक कर कहा, पानी गिर गया था, कीचड़। मैं, उसकी आवाज फिर टूट गई, इसलिए उसने अपने कपड़े दे दिए, वो जल्दी जल्दी बोली। मैंने कुछ गलत नहीं किया, सच। हॉल में खामोशी उतर आई। शकुंतला कुछ पल तक उसे देखती रही। उसकी आंखों में अभी भी शक था, लेकिन कहीं बहुत भीतर डर ने दस्तक दी थी। श्यामली ने धीरे से कहा, दीदी देखिए, बच्ची डर गई है। रत्ना देवी आगे बढ़ी। उन्होंने कांपते हाथों से रम्या का सिर सहलाया। बस हो गया, आ गई है, वो सुरक्षित है। लेकिन शकुंतला अब भी वहीं खड़ी थी। तू झूठ तो नहीं बोल रही? आवाज में सख्ती कम थी, लेकिन चोट ज्यादा गहरी। रम्या ने रोते रोते सिर उठाया, आंखें लाल थीं, गाल गीले। अगर झूठ बोल रही हूं, वो कांपती आवाज में बोली, तो भगवान मुझे सजा दे। शकुंतला के चेहरे पर कुछ टूटा, बहुत छोटा लेकिन असली। उसने गहरी सांस ली, कुछ कहने को होंठ खुले लेकिन शब्द नहीं निकले। रम्या ने एक पल और खड़ा रहना चाहा, शायद मां की आंखों में भरोसा ढूंढने के लिए, लेकिन वहां अभी भी सवाल थे। वो अचानक मुड़ी, बिना कुछ और कहे रोती हुई अपने कमरे की तरफ भाग गई। उसके कदमों की आवाज सीढ़ियों पर गूंजती चली गई। दरवाजा जोर से बंद नहीं हुआ, बस धीमे से, जैसे कोई थककर खुद को बंद कर रहा हो। हॉल में रह गए 3 लोग और एक भारी चुप्पी। रत्ना देवी ने शकुंतला की तरफ देखा। बच्ची है शकु, उनकी आवाज में विनती थी। शकुंतला ने सिर झुका लिया। उसकी आंखें नम थीं, लेकिन आंसू नहीं गिरे। मुझे डर लगता है माँ, वो बहुत धीमे बोली। दुनिया बहुत जल्दी उंगली उठाती है। श्यामली ने पास आकर उसका हाथ थाम लिया। डर से डांट निकल आती है, उसने नरमी से कहा। लेकिन बच्चे को समझ चाहिए। शकुंतला ने कुछ नहीं कहा, बस ऊपर की तरफ देखा, उस कमरे की ओर जहां एक 16 साल की बच्ची आंसुओं में लिपटकर खुद को अकेला महसूस कर रही थी। शाम गहराती जा रही थी और इस घर में आज रात नींद से पहले कई सवाल जवाब ढूंढते रहने वाले थे। कमरे का दरवाजा बंद था, अंदर सिर्फ सिसकियों की आवाज थी, रम्या की। वो बिस्तर के किनारे बैठी थी, घुटने मोड़े हुए, चेहरा उन्हीं में छिपाया हुआ, हाथ कांपते हुए मोबाइल पकड़े थे। पापा, उसकी आवाज रोते रोते टूट रही थी, मां ने मुझ पर इल्जाम लगाया, ऐसे जैसे मैंने कोई गुनाह कर दिया हो। उधर से सुधीर की आवाज नहीं आई, बस सांसों की हल्की सी आहट थी, जैसे वो बोलना चाहता हो लेकिन पहले सुनना जरूरी समझ रहा हो। मैंने कुछ गलत नहीं किया था, रम्या बोली। फिर भी उन्होंने लड़के का नाम पूछा, मुझे बहुत बुरा लगा। उसकी सिसकी तेज हो गई। आप यहां होते ना तो वाक्य अधूरा रह गया। फोन के उस बार सुधीर अब भी चुप था, कभी कभी हूं जैसी धीमी आवाज, बस इतना कि रम्या को लगे वो अकेली नहीं है। तभी दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। रम्या ने चौंक कर सिर उठाया, आंखें तुरंत दरवाजे की तरफ गईं। रम्या, श्यामली की आवाज बाहर से आई। मैं अंदर आऊं? रम्या ने जल्दी से फोन कान से हटाया, एक पल की हड़बड़ी और बिना कुछ कहे कॉल काट दी। हां, उसने भरी आवाज में कहा। दरवाजा खुला, श्यामली अंदर आई, हाथ में लंबा सा ग्लास था, ऊपर झाग, चॉकलेट की खुशबू, मिल्क शेक, रम्या का पसंदीदा। श्यामली की नजर पहले रम्या के चेहरे पर गई, सूजी हुई आंखें, लाल नाक, गालों पर आंसुओं की लकीरें, फिर मोबाइल पर जो रम्या ने जल्दी से तकिए के नीचे सरखा दिया था। श्यामली के कदम एक पल को थमे, मन में सवाल उठा, किससे बात कर रही थी और मुझे देखते ही फोन क्यों काट दिया। लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, वो बस पास जाकर बैठ गई, मिल्क शेक आगे बढ़ाया। ठंडा है, वो बहुत प्यार से बोली, जैसा तुझे अच्छा लगता है। रम्या ने ग्लास देखा, फिर श्यामली की तरफ और फिर फूट फूट कर रो पड़ी। श्यामली ने तुरंत ग्लास साइड टेबल पर रख दिया और रम्या को अपनी बाहों में खींच लिया। उसने उसके बालों में हाथ फेरा, रो ले, आज रो लेने दे खुद को। रम्या ने उसका कुश्ता कसकर पकड़ लिया। मुझे बहुत बुरा लगा मामी, वो सिसकते हुए बोली। माँ ने मुझ पर भरोसा नहीं किया, श्यामली ने उसकी पीठ थपथपाई। माँ डर गई थी, वो धीरे से बोली। डर में इंसान गलत बोल जाता है, पर मैंने सिसकी ली, मैं झूठ नहीं बोल रही थी, मुझे पता है, श्यामली ने बिना रुके कहा, और उन्हें भी पता है, बस अभी मान नहीं पा रही होंगी। रम्या की रुलाई धीरे धीरे हल्की होने लगी, सांसें अब भी कांप रही थीं, लेकिन टूट नहीं रही थीं। श्यामली ने उसके गाल से आंसू पोंछे, थोड़ा सा पीछे, उसने मिल्कशेक की तरफ इशारा किया। ठंडा है, मन भी ठंडा करेगा। रम्या ने हल्की सी मुस्कान के साथ सिर हिलाया, एक छोटा सा घूंट लिया। श्यामली बस वहीं बैठी रही, बिना सवाल किए, बिना फोन का जिक्र किए, क्योंकि कुछ सवाल उस वक्त पूछे जाते हैं जब दिल पहले संभल जाए। कमरे में अब सिसकियों की जगह खामोशी थी, लेकिन वो खामोशी पहले जैसी अकेली नहीं थी।